हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। करिश्मा जी की बात सुनकर तारा हैरान हो गई और सोचने लगी, इतने सालों से शक्तिशाली जिन महाराज के सामने से उनके बेटे को अगवा कर लिया गया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई थी। ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने ऐसा काम किया था? तब तारा ने करिश्मा के हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, आपको फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं हूं ना, मैं पिताजी को जरूर ढूंढ कर लाऊंगी और उनका पता लगाऊंगी, आप बिल्कुल भी फिकर मत कीजिएगा। तभी करिश्मा तड़प कर बोली, नहीं नहीं तारा बेटी, नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस काम की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि इस काम में कितना खतरा है। तुम नहीं जानती काली शक्तियाँ कितनी खतरनाक हैं, वे कुछ भी कर सकती हैं। बेटा, तुम एक मामूली इंसान हो, भले ही अपने पेट में पल रहे वंशज के कारण तुम अपने आप को शक्तिशाली समझ रही हो, लेकिन बेटा, तुम में उन काली शक्तियों का सामना करने की शक्तियाँ नहीं हैं। इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी और तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचोगी, और एक बार बस इस बच्चे को आने दो, फिर देखना, जैसे ही ये बच्चा आएगा ये खुद अपने दादाजी को ढूंढ कर लाएगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा आराम करो और अपना ध्यान रखो, क्योंकि तुम नहीं जानती इस वक्त कितना बड़ा खतरा तुम्हारे सर पर मंडरा रहा है। जितनी भी काली शक्तियाँ हैं वे सब खतरा बनकर तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये सभी काली शक्तियों का काल है। इसीलिए सभी काली शक्तियाँ पीछे पड़ी हुई हैं और हमें इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ तुम्हारा भी, क्योंकि अगर तुम ठीक रहोगी तभी ये बच्चा ठीक रहेगा। इसीलिए बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझसे आज मेरे दुख और दर्द की वजह पूछी थी और मैंने तुमसे वो शेयर कर लिया। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं अपने आप को काफी हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी करिश्मा जी कुछ और कहना चाहती थीं कि तभी तारा का फोन बजने लगा। इस वक्त अमन का फोन देखकर तारा मुस्कुराने लगी। देखो, अभी आपके बेटे को गए हुए 2 घंटे ही हुए हैं और अभी से उन्होंने मुझे फोन खटखटाना शुरू कर दिया है। तब करिश्मा मुस्कुराने लगी और बोली, बेटा तुम अमन से बात करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। तुमने अच्छी तरह से कुछ नाश्ता भी नहीं किया है, और बेटा तुम्हें किसी भी तरह की परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम अपना और बच्चे का ध्यान रखो। ऐसा कहकर करिश्मा जी तारा के गाल पर प्यार से हाथ फेरती हुई उसके लिए कुछ खाने को लेने के लिए चली गईं। तभी तारा ने अमन का फोन उठा लिया और फोन उठाते ही बोलने लगी, ये क्या अमन सर, आप तो बड़े ही चालबाज निकले, आप आज मुझे छोड़कर ही चले गए। क्या ऑफिस में मैं आपको इतना सताती हूँ? कम से कम आपने मेरे उठने का भी वेट नहीं किया। अगर मुझे एटलीस्ट आप उठा ही देते। तारा ने झूठ मूठ नाराजगी जाहिर करते हुए अमन से कहा, लेकिन अमन ने उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और वो बदले में खामोश रहा। अमन को इस तरह से चुप देखकर हैरानी होने लगी, क्योंकि वो इतना जानती थी कि अमन इस तरह से चुप रहने वालों में से नहीं था। अगर तारा ने उसे कुछ शिकवा किया होता तो वो कुछ ना कुछ तो मानता या कुछ ना कुछ जवाब देता, लेकिन अमन ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। तब तारा को कुछ डर सताने लगा और वो बोली, अमन सर क्या हुआ, अब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या बात है? वहीं अमन अब तारा को लेकर काफी डर गया था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि तारा की जान कहीं ना कहीं खतरे में है, क्योंकि अब काली शक्तियों ने उसके ऑफिस वालों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया था। वे सिर्फ और सिर्फ अमन को डराना चाहते थे। अमन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी कोई कमजोरी बन जाएगी, और तारा उसकी इतनी बड़ी कमजोरी बन चुकी थी कि उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अमन को कुछ बोलता हुआ न देखकर तारा ने एक बार फिर कोशिश की और बोली, अमन सर कुछ जवाब तो दीजिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अच्छा बाबा, अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुप हो जाती हूँ, आप कुछ तो बोलिए प्लीज, आपको इस तरह से खामोश देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तारा ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा। तारा की बात सुनकर अमन बोला, तारा तुम ठीक हो ना? तब तारा ने कहा, अमन सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ? तब अमन बोला, कुछ नहीं, मैं घर आ रहा हूँ, मैं तुम्हें देखे बगैर रह नहीं पा रहा हूँ। अमन ने अपने दिल की बात अपनी जबान से बोल दी और जल्द ही फोन रख कर वो घर के लिए रवाना हो चुका था। वहीं विक्रांत रंधावा भी यही चाहता था, वो भी ऑफिस में आज काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि तारा तो आज ऑफिस नहीं आई थी तो उसका दिल ही नहीं लग रहा था, इसीलिए उसे भी कोई ना कोई बहाना चाहिए था, जो कि राधिका के मर्डर का उसे बहाना मिल चुका था। जल्दी ही विक्रांत रंधावा भी ऑफिस से घर के लिए रवाना हो चुका था। अमन ने जाने से पहले विक्रांत से कह दिया था कि वो ऑफिस में 3 दिन के लिए छुट्टी घोषित कर दे, क्योंकि जब तक राधिका मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक ऑफिस नहीं खुलेगा। अमन की बात सुनकर विक्रांत चौंक रहा था, लेकिन फिर कुछ सोचता हुआ मुस्कुराने लगा कि चलो अच्छा है, ये 3 दिन उसे तारा के साथ बिताने का मौका मिलेगा। इस बीच में अमन को भी अपने रास्ते से हटाने के प्लान बनाने लगा था। जल्दी ही अमन के कहे मुताबिक विक्रांत रंधावा ने ऑफिस में 3 दिन की छुट्टी घोषित कर दी थी। अमित और मल्लिका एक दूसरे को देखने लगे थे। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। कहाँ तो सारे काले काम वे दोनों करते थे, लेकिन अब तो उनसे पहले ही कोई था जो ये सारे काले कारनामे कर रहा था। अमित को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे पागल हो गया हो, क्योंकि एक तो वो तारा को अपना बनाने की जिद कर बैठा था, लेकिन तारा उसे अपनी पहुंच से बहुत दूर नजर आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से तारा को अपना बनाए, और वहीं अब इस तरह के कभी मर्डर हो रहे थे, कभी चोरी का अटैक हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। ये सब बातें अमित को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। इसीलिए उसने इन सब के पीछे कौन था इसका पता लगाने का फैसला ले लिया और जल्दी ही उन 3 दिन की छुट्टियों में अपने गुरुजी के पास जाने का फैसला ले लिया, जो कारी पहाड़ी पर निवास किया करते थे। अमित को पूरा यकीन था कि इस दुनिया में अगर कोई उसके सवालों का जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके गुरुजी हैं, क्योंकि अमित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अब आगे क्या करना है, तो इसका रास्ता निकालने के लिए वो अपने गुरु के पास जाने का फैसला ले चुका था, और इन 3 दिन की छुट्टी में उसे कोई पूछने वाला भी नहीं था। वहीं मल्लिका जैसे ही घर के लिए निकली, वो विक्रांत के साथ साथ ही निकली और इशारों ही इशारों में विक्रांत से मिलने को कहने लगी। विक्रांत समझ चुका था कि ये मल्लिका उसे कुछ कहना चाहती है, इसीलिए विक्रांत लुक गया और जैसे ही वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ा, उसने मल्लिका को भी अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उसने सब कुछ इतनी जल्दी किया कि किसी की उन दोनों पर नज़र नहीं पड़ी।
गाड़ी में बैठते ही मल्लिका ने विक्रांत से पूछा, मुझे क्या काम करना है और कब से शुरू करना है? मल्लिका की बात सुनकर विक्रांत उसे गहरी नज़रों से देखने लगा और बोला, तुम्हें मैंने गाड़ी में इसलिए नहीं बिठाया है कि तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर सको कि तुम्हें क्या काम करना है क्या नहीं। तुम्हें क्या काम करना है ये मैं तुम्हें खुद ब खुद वक्त आने पर बता दूंगा, लेकिन तब तक तुम मुझसे दूरी बनाकर रखोगी। जिस तरह से आज तुमने मुझे सबके सामने इशारा करने की हिम्मत की है वो दोबारा मत करना। मल्लिका ने विक्रांत को इशारा करके कुछ बात करने के लिए कहा था। ये बात विक्रांत रंधावा को बहुत बुरी लगी। वो नहीं चाहता था कि मल्लिका को इशारा करते हुए कोई देखे, और मल्लिका कोई इंसान तो थी ही नहीं, वो काली शक्तियों की चुड़ैल थी। ये बात विक्रांत रंधावा अच्छी तरह जानता था, तो इसका मतलब साफ था, अगर मल्लिका काली शक्तियों की चुड़ैल इस तरह से ऑफिस में थी तो कोई ना कोई काली शक्तियों का भूत, चुड़ैल या कोई और भी वहां मौजूद हो सकता था, और विक्रांत रंधावा भी किसी और लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसका अभी मकसद सिर्फ और सिर्फ तारा थी, तारा के खूबसूरत जिस्म को पाना ही उसका मकसद था। विक्रांत की बात सुनकर मल्लिका ने अपना मुंह बना लिया और जल्दी ही विक्रांत की गाड़ी से उतर गई। मल्लिका के जाने के बाद विक्रांत बोलने लगा, बेवकूफ लड़की चली है मुझे फंसाने के लिए, वो भी विक्रांत रंधावा को। मल्लिका के जाने के बाद विक्रांत रंधावा ने मल्लिका को बुढ़िया कहा था, क्योंकि अभी से मल्लिका से काफी काम निकलवाने थे, तो वो अभी मल्लिका को अपने खिलाफ नहीं करना चाहता था। वैसे भी मल्लिका की जान लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसे मल्लिका का अभी किसी जरूरी काम के लिए प्रयोग करना था, इसीलिए उसने मल्लिका को जिंदा छोड़ा हुआ था। लेकिन मल्लिका अपनी आदतों से बाज नहीं आती थी। विक्रांत से मिलते वक्त वो अपने आप को काफी ज्यादा ओपन कर दिया करती थी, लेकिन विक्रांत उसे एक झटके से अपने से दूर कर दिया करता था, क्योंकि मल्लिका को तो इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि विक्रांत उसे अपने लटके झटकों से फंसाने की कोशिश कर रही है। वो वहां सिर्फ और सिर्फ तारा के लिए आया हुआ था, और तारा ही उसका इकलौता मकसद था।